आप भी तो श्राप झेल रहे हैं ना, अनंत ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उसकी बात सुनते ही अनूप सिंह चौंक गया। अनंत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, काल शंकु का श्राप, क्योंकि काल शंकु किसी को माफ नहीं करता है। बलियों के साथ साथ पिछले 100 सालों से आपका परिवार भी तो यह श्राप झेल रहा है। अनूप सिंह हंसने लगा। ऐसा लग रहा है कि आपको किस्से कहानियों का शौक है, पर मैं जानना चाहता हूं कि यह कहानी आपको किसने सुनाई है। आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि मुझे यह कहानी आपने सुनाई है। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु दूसरा अध्याय भाग 22। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। बल्लियों की तलाश में निकले अनंत और सुशांत का आखिरकार बल्लियों से सामना हो ही गया था। लेकिन वो तो ढूंढ रहे थे भभूति बल्ली को और इसके लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अनंत ने टॉर्च की रोशनी गाड़ी के अंदर डाली। वहां एक माचिस जलने की रोशनी हुई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही माचिस की तीली एक बीड़ी को सुलगा रही थी। अनंत को समझ आ गया था कि ये भभूति पल्ली ही है। उसने बंदूक को संभाल लिया। गाड़ी का पीछे का दरवाजा खुला। उसमें से पहले एक आदमी नीचे उतरा और उसके बाद बीड़ी का कश फूंकता भभूति पल्ली। अब आगे बंदूक सामने देखकर भी भभूति के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उसने बीड़ी का एक गहरा कश फूंका और धुआं अनंत के चेहरे पर छोड़ दिया। पिछले समय चक्र की दहशत भरी यादें अनंत पर इस कदर हावी थी कि एक बार की उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। बीड़ी पिएगा, भभूति ने अपने अंदाज में कहा। अनंत उसकी बात समझ नहीं पाया। उसने कहा, हं? अरे सहरी बिलाव, बीड़ी पिएगा बीड़ी। अनंत को जैसे सांप सूंघ गया था। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वहीं खड़े सुशांत ने इस बात को भांप लिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने बीच में आकर कहा, मैं पीऊंगा बीड़ी। और उसने भभूति के हाथ से बीड़ी लगभग छीन ली थी। वहां मौजूद सभी लोग इस पूरे वाकये को एकटक देख रहे थे, जबकि सुशांत ने बीड़ी का कश लेकर उसे वापस भभूति की ओर बढ़ा दिया। और कोई वक्त होता तो शायद इतनी हिमाकत करने के बाद भभूति के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था, या किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो सकती थी कि वो भभूति के हाथ से बीड़ी छीन ले। लेकिन ये वक्त कुछ और था। भभूति ने बड़े गौर से सुशांत की तरफ देखा और बीड़ी उसके हाथ से लेकर एक कश लिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अब तक अनंत की हिम्मत भी लौट आई थी। भभूति ने उसकी तरफ देखकर कहा, तू जरूर अनंत है, और यो मुस्तंडो सुशांत। सुशांत ने जवाब दिया, अभी तक तो सही पहचाना है तूने। लेकिन भभूति उससे बात करने के मूड में कतई नहीं था। उसने सुशांत को इग्नोर करते हुए अनंत से कहा, तो सेरी बिलाव, भभूति बल्ली थारे सामने खड़ो है, बता काई काम है मारे से। अनंत ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो हमारे पास है, तुम्हारा पूरा पापा भी और कालशंकु भी। भभूति चुप था, फिर अचानक से हंसते हुए फट पड़ा, भाई दाद देनी होगी था लोगों की हिम्मत की, मारा इलाके में घुस के वो डोकरा ने उठा लिया और अब मारे सामने खड़े होके मारे से बात कर रहे हो। पहली बार भभूति बल्ली ने कोई चैलेंज किया है, दाद देनी पड़ेगी। भभूति ने बीड़ी का आखिरी कश खींचकर बीड़ी को फेंक दिया और जूते की नोक से उसे ऐसे मसलने लगा जैसे ऐसा करके वो उन्हें अपना डर दिखा रहा हो। दाद देनी पड़ेगी। शायद सुशांत उसका एटीट्यूड झेलने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने अपनी सिगरेट सुलगा ली और सिगरेट भभूति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब उस बीड़ी में और जान नहीं बची है, छोड़ उस बीड़ी को और इस सिगरेट भी। दो लोग जो अलग अलग समय चक्र में एक दूसरे की जान ले चुके थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि वो दूसरे से कम नहीं है। खैर, फिलहाल भभूति ने उसके हाथ से सिगरेट ली और कश फूंकते हुए कहा, तो तुम लोगों ने क्या सोचा, यहां से जिंदा बचकर निकल जाओगे? ये कहकर भभूति आसमान में सिगरेट का धुआं छोड़कर उसे देखने लगा। अब की बार अनंत ने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर कष्ट लेते हुए जवाब दिया, देख जिंदा कौन बचेगा और कौन नहीं, ये तो उस बाबा ने तेरे को बता ही दिया होगा। पता है ना, काल शंकु किसी को माफ नहीं करता है। भभूति ने अनंत के हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा, या तो घणी चौकी बात कही तेने, काल शंकु कोई ना माफ ना करे है, सबको मरनो तय है, सबको मरनो, पर कोई न कब मरनो है, बट है यह बात मैं तय करूं हूं। भभूति ने एकदम से अपनी जेब में से कुछ निकालना चाहा। सुशांत सतर्क था, वो उस पर झपट पड़ा, लेकिन भभूति ने आगे कहा, अरे बीड़ी निकाल रहा हूं बावड़े छालर। वो वाकई में बीड़ी ही निकाल रहा था। उसने सिगरेट फेंक कर बीड़ी सुलगा ली और अनंत से कहा, तो बता तू काई चावे है? अनंत ने सधे हुए शब्दों में जवाब दिया, मैं बस ये चाहता हूं कि हम लोग इस बार मिलकर काम करें ताकि किसी को मरना ना पड़े, इसमें हम सबका फायदा है, वैसे भी तुम अपने हिसाब से करके देख चुके हो। यह कहकर अनंत चुप हो गया। भभूति बीड़ी फूंकते हुए भी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। आगे बोल। सुन रही हूं। अनंत ने आगे कहा, 15 तारीख की रात को इस बार हम लोग साथ में मिलकर अनुष्ठान पूरा करेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा, बस काम मेरे हिसाब से करना होगा। भभूति ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने कहा, और थारी गारंटी काई है? अनंत के पास जवाब तैयार था, गारंटी तो तुम्हारी भी क्या है, पर मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, तुम मुझ पर भरोसा करो। इसके बाद वहां शांति छा गई। सुशांत और अनंत दोनों सोच रहे थे कि भभूति आगे क्या करने वाला है। भभूति बीच बीच में बुदबुदा रहा था, भरोसा भरोसा भरोसा। कुछ देर बाद भभूति ने सुशांत की तरफ देखते हुए कहा, ले रे बीड़ी पी भरोसा की खातिर। सुशांत ने उसके हाथ से बीड़ी ली। भभूति ने फिर से एक और बीड़ी सुलगा ली। वहां कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन बगैर बोले ही भभूति ने अनंत की पेशकश मान ली थी। आखिर में अनंत ने ही कहा, आज 12 की रात है, परसों यानी 14 फरवरी को मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें क्या करना है। ये बात कहते वक्त अनंत का कॉन्फिडेंस डोल रहा था कि पता नहीं भभूति क्या रिएक्ट करेगा, मगर भभूति ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद अनंत और सुशांत दोनों वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। 13 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त। तो बल्लियों के बारे में क्या पता लगा आपको? कुंवर अनूप सिंह ने सामने बैठे अनंत से पूछा। जवाब में अनंत ने कहा, आपने सही कहा था, उनका पास चाहे जो भी हो लेकिन प्रेजेंट काफी खतरनाक है। अपनी उत्सुकता को छिपाते हुए अनूप सिंह ने पूछा, आप मिले उन बल्लियों से? अनंत ने असल बात को छिपाते हुए कहा, मुझे लगता है कि उनकी मर्जी के बगैर उनसे कोई नहीं मिल सकता है। अनूप सिंह और कुछ पूछे इससे पहले ही अनंत दूर खड़े सुशांत की तरफ देखने लगा, जो इस वक्त राजस्थानी गेटअप से सजी मूर्तियों के साथ सेल्फी लेने में बिजी था। असल में अनंत ने जानबूझकर अनूप सिंह से मीटिंग के लिए लोकेशन उसके हाईवे वाले रेस्टोरेंट की रखी थी। इस बार वो किसी गलती के मूड में नहीं था। रात को भभूति से मिलकर लौटते वक्त भी उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कोई उनका पीछा ना कर रहा हो, और अभी भी उसे यह ध्यान था कि उन्हें अनूप सिंह से भी सावधान रहने की जरूरत है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अनूप सिंह ने कहा, वक्त वक्त की बात है जी, एक वक्त था जब राज की सेवा में ये लोग खड़े रहते थे, राज पर आने वाला हर संकट पहले इन लोगों से टकराता था, और एक आज का वक्त है, आज यही सबसे बड़ा संकट है। ये तो क्या है जी, कि नक्सली विचारधारा है, मतलब इन लोगों का मानना है कि इनके हक को लूटा गया है, इसलिए ये भी लोगों को लूटेंगे मारेंगे। आपने तो इन लोगों को स्टडी किया ना अनंत जी, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? असल में अनूप सिंह अनंत से बल्लियों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए वो बात को घुमा फिरा कर फिर से बल्लियों पर ही ले आया। अनंत चुप था, फिर कुछ सोचकर उसने जवाब दिया, ये लोग श्राप झेल रहे हैं। अनूप सिंह ने चौंककर कहा, श्राप? अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अनूप सिंह ने आगे कहा, अनंत जी, आप जैसे शहरी लोगों के साथ यही तो दिक्कत है। आप इन लोगों की फैंसी स्टोरी सुनकर इन्हें रिवॉल्यूशनरी, रेबल, विद्रोही, क्रांतिकारी और ना जाने क्या क्या तमगे दे देते हैं। फॉरगिव माय लैंग्वेज, दीस आर बास्टर्ड्स। ये साले हरामी डकैत इंसान को मारने में टाइम नहीं लगाते हैं। पता नहीं कितने घरों को उजाड़ दिया होगा इन्होंने। अपनी बात कहते कहते अनूप सिंह थोड़ा गुस्सा हो गया था, लेकिन अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप उसे ऑब्जर्व कर रहा था। अनंत की चुप्पी की वजह से अनूप सिंह ने आगे कहना जारी रखा, ऐसे तो हम लोगों के भी राज छीन लिए गए, मगर हम तो नहीं कह रहे कि हमारा हक मार लिया गया। हम तो नहीं बंदूकें लेकर लोगों को लूटने निकल पड़ते हैं। कल हम राज किया करते थे और आज आप बताइए क्या है ये। अनंत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आप भी तो श्राप झेल रहे हैं। अनूप सिंह ने एक झटके से उसकी तरफ देखा। अनंत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, काल शंकु का श्राप। काल शंकु किसी को माफ नहीं करता है। बलियों के साथ साथ आपके परिवार ने भी तो भोगा है श्राप। अनंत की बात ने अनूप सिंह को आश्चर्य में डाल दिया था, लेकिन उसने अपने आप को काबू में रखते हुए अनंत से कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप। अनंत ने धीमी आवाज में कहा, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और आप इस बात का मतलब अच्छी तरह से समझते भी हैं। अनूप सिंह ने अनजान बनते हुए कहा, अब आप पहेलियां बुझा रहे हैं। लेकिन अनंत के पास जैसे बात का जवाब था। अच्छा, मैं पहेलियां बुझा रहा हूं तो आप सच सच बताइए कि आपको नहीं पता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, आपके पूर्वजों के पास क्या जिम्मेदारी थी, और जब कालशंकु अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ। क्या आपका परिवार 100 सालों से कालशंकु का इंतजार नहीं कर रहा था। कुछ देर वहां सन्नाटा छाया रहा, फिर अनूप सिंह हंसने लगा। एक लंबी हंसी के बाद उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि आपको किस्से कहानियों का अच्छा शौक है, पर मैं जानना चाहता हूं कि यह कहानी आपको किसने सुनाई है। अनंत ने जवाब दिया, आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि मुझे ये कहानी आपने सुनाई है। इस बार अनूप सिंह बुरी तरह से चौंक गया था। कहना क्या चाहते हैं आप। अनंत ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आप कालशंकु को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बस इंतजार कर रहे हैं उस सही घड़ी का जब कालशंकु अपनी मंजिल तक पहुंच चुका होगा, और उस वक्त आप बल्लियों को मारकर वो हासिल करना चाहते हैं जो आपके हिसाब से आपका हक है। अनूप सिंह जी, मैं जानता हूं कि यह चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो रास्ता चुन रहे हैं वो रास्ता किसी मंजिल तक नहीं ले जाता है। जो श्राप कालशंकु के साथ जुड़ा है उससे कोई नहीं बच सकता है, ना बल्ली, ना आप और ना ही मैं। अनूप सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका था। अनंत ने आगे कहा, हां, मैं भी कालशंकु के श्राप में उलझ चुका हूं। अब हम सबकी राहें एक हैं। ऐसा लग रहा था कि अनूप सिंह को समझ आ गया था कि अब कोई बात छिपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने कहा, आप इस बारे में इतना कैसे जानते हैं। अनंत ने इस बात का जवाब देने की जगह उल्टा अनूप सिंह से पूछा, अनूप सिंह जी, हम लोग कितनी बार मिल चुके हैं। अनूप सिंह ने कहा, हम, ये दूसरी बार है। अनंत ने कहा, ऐसा आपको लगता है, जो कुछ होने वाला है वो पहले भी कट चुका है, एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार, लेकिन तीनों बार अंजाम एक ही था, और वो था मौत। अनंत ने जिस भरोसे के साथ ये बात कही उसने अनूप सिंह को हिलाकर रख दिया था। आखिर में अनंत ने कहा, मुझे पता है कि 15 तारीख की रात को आप क्या प्लान करने वाले हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपके पास जो हथियार और ताकत हैं, बल्ली उसके सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक सकते हैं, लेकिन फिर भी अंत आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अनूप सिंह सोच में डूब गया था। अनंत ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, मगर। अनूप सिंह ने पूछा, मगर क्या। मगर काम वैसे करना होगा जैसे मैं कहूंगा। अनूप सिंह ने कहा, अनंत जी, आप जितनी अथॉरिटी से मुझसे ये बात कह रहे हैं बल्लियों से कह सकते हैं। अनंत ने जवाब दिया, उनकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उनसे बात कर चुका हूं। आप बस इंतजार कीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अनंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और सुशांत के साथ वहां से बाहर चला गया। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अपने पिछले अनुभवों के बाद अनंत को भी ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी, इसलिए उसने इस कहानी से जुड़े हर किरदार की सभी संभावित चालों को ध्यान में रखकर बिसात रची थी। मगर इंसान के सोचने भर से तो सब कुछ नहीं हो जाता है। अनंत को लग रहा था कि उसने इस कहानी से जुड़े हर पहलू, हर किरदार की चालों का तोड़ सोच रखा है, मगर फिर भी कुछ किरदार ऐसे थे जिनके बारे में उसका ध्यान गया ही नहीं था, क्योंकि कुछ किरदार चालें नहीं रचा करते हैं। आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 22, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस। दोस्तों, मैं दीपक मेड़तवाल, वो कहानियां शो का क्रिएटर, आपके साथ एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करनी है। कालशंकु दूसरा अध्याय कहानी बस अगले 3 एपिसोड्स में पूरी होने वाली है, और उससे बड़ी बात, जैसा कि मुझे लग रहा है, आने वाले 3 एपिसोड्स में कहानी खतरनाक तरीके से घूमने वाली है। जी हाँ, खतरनाक तरीके से। वैसे मैं जानता हूं कि पसंद नापसंद हर किसी की अलग अलग होती है, मगर आप अगर सेकंड सीजन में यहां तक पहुंचे हैं तो जरूर आप कहानी को पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से कहूंगा, प्लीज अगले 3 एपिसोड्स को हेडफोन लगाकर तसल्ली से सुनिएगा। कहानी में मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। आई होप एंड आई बिलीव आप इसे जरूर पसंद करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा टाइम निकालकर कालशंकु कहानी वो कहानियां शो के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिव्यू लिखें। ये वो कहानियां शो के लिए बहुत बड़ी, जी हां, बहुत बड़ी हेल्प होगी। शुक्रिया, और सुनते रहिए वो कहानियां।